ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज दोपहर बाद 3 बजे तक 46.12% मतदान की खबर है। मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए उत्साहित लोगों की लंबी कतारें देखी गई हैं। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ था। इस चरण में 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान के लिए 3,502 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये जिले हैं जम्मू क्षेत्र के रियासी, राजौरी तथा पुंछ और कश्मीर घाटी के श्रीनगर, बडगाम तथा गंदरबल। लगभग 25,78,000 मतदाता 239 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। देशभर में 24 मतदान केंद्रों पर 15,500 से अधिक कश्मीरी पंडित वोट डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बीच 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के निरीक्षण के लिए आज कश्मीर का दौरा कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि शिष्टमंडल में अमरीका, मैक्सिको, गयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नार्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के राजनयिक शामिल हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक आज प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में 22 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के पक्ष में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के अंतर्गत हरियाणा ने उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में शीर्ष राज्यों में अपनी जगह बनाई है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी ताजा वार्षिक सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार पिछले वर्ष देश में बेरोजगारी की दर में काफी गिरावट आई है। इस दिशा में हरियाणा जैसे राज्यों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर 3.2% रही। इस दौरान वर्ष 2022-23 की तुलना में 5.1% की गिरावट आई है। हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर में सबसे अधिक गिरावट आई है। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। इन कार्यों से भारत के विनिर्माण परिदृश्य में क्रांति आई है और हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया भारत को विनिर्माण और नवाचार शक्ति केंद्र बनाने के 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का उदाहरण है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने उम्मीद व्यक्त की है कि वक्फ विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति आगामी शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। उन्होंने कहा कि समिति को अब तक 1 करोड़ से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों पर मीडिया को जानकारी देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि अभी व्यापक विचार विमर्श चल रहा है और समिति विभिन्न सरकारी और सामाजिक संगठनों से विचार और सुझाव मांग रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग संधि के माध्यम से आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ी है और वस्तुओं के व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आज एडिलेड में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने सिडनी में व्यापार संवर्धन के लिए कार्यालय खोले जाने की घोषणा की। नेपाल में तराई क्षेत्र के थारू और मधेसी समुदाय की महिलाएं आज पारंपरिक जितिया त्योहार मना रही हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हुए पूरे दिन का निर्जला उपवास रखती हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि जितिया जैसे त्योहार परस्पर सद्भाव, सम्मान और सहनशीलता को बढ़ावा देते हैं तथा देश की विविधता का संरक्षण करते हैं। ताजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। ऋषभ पंत ने रैंकिंग में 6ठा स्थान हासिल किया है। टेस्ट में शानदार वापसी करने वाले पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 109 रन की शतकीय पारी खेली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।